आज ये 104 नंबर का श्लोक है। इसमें साधनों का निरूपण कर रहे हैं। तो सबसे पहला साधन बता रहे हैं यम। ये यम क्या चीज है, जरा ये समझने की बात है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यम शब्द की व्याख्या में लिखा, यमः संयमताम अहम्। संयमन करने वालों में मैं यम हूं, इसलिए यमराज की जो पुरी है उसका नाम है संयमनी पुरी। यम जीवन के विरोधी नहीं है, जीवन को समाप्त नहीं करते बल्कि जीवन को नियंत्रित करते हैं। जैसे घोड़े की लगाम होती है ना, वो लगाम क्या करती है, घोड़ा सही रास्ते पे चले उसको रोकती है। तो संयम, तो यमराज का अर्थ हुआ जो जीवन को संयमित करे। अनियंत्रित जीवन हो जाता है। एक समय जब तुम्हारे माता पिता के घर संतति नहीं हो रही थी, उन्होंने संतान के लिए परमात्मा से जाके दुआएं मांगी, जीवन उपलब्ध हुआ, 100 वर्ष के ऊपर आयु हो गई, न चला जाता है न देखा जाता है, चारों तरफ गंदगी फैला देते हो, तब तुम ही परमात्मा से दुआ मांगते हो कि ये चला जाए। जीवन को संयमित करता है यमराज, जीवन को समाप्त नहीं करता, जीवन को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार से इंद्रियों को संयम कैसे करें उसके लिए बता रहे हैं। देख लो, सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानात् इंद्रियग्राम संयमः यमोयम् इति संप्रोक्तो अभ्यसनीयो मुहुर्मुहु। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि जीवन की जो आपाधापी है, जीवन की जो भाग दौड़ है, ये भाग दौड़ कैसे समाप्त हो। आप क्यों दौड़ते हो, क्यों भागते हो? क्योंकि आपकी मंजिल कहीं और है। आदमी अपनी मंजिल की तरफ दौड़ता है, अपनी मंजिल की तरफ भागता है, और भाग दौड़ तब तक है जब तक मंजिल न मिल जाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आदमी भागता रहता है लेकिन आदमी को मंजिल मिलती नहीं है, क्योंकि उसको अपनी मंजिल का पता ही नहीं है, मेरी मंजिल क्या है। इसलिए जिंदगियां समाप्त होती हैं। शंकराचार्य भगवान ने लिखा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी। एक जन्म से नहीं, न जाने कितने जन्मों से भाग रहा है ये, लेकिन मंजिल मिली नहीं इसको। नदी गोमुख से गंगा निकलती है और गंगा सागर तक भागती रहती है, क्योंकि गंगा की मंजिल गंगा सागर है। तो पहले तो अपनी मंजिल का बोध होना चाहिए। शंकराचार्य कहते हैं तुम्हारे जीवन में यम उसी समय आ जाता है जिस समय तुम अपनी मंजिल को पा लेते हो। क्या है तुम्हारी मंजिल? तो आत्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, ये आपकी मंजिल है। और कुछ नहीं है मंजिल। तब आचार्य ने कहा कि यम कैसे जीवन में आएगा, कहते हैं उसी दिन आदमी के कदम रुक जाएंगे जिस दिन आदमी ये समझेगा कि मेरी मंजिल मेरे अंदर ही विद्यमान है। योगी ध्यान में, तुम दिन भर भाग दौड़ के दुखी हो, योगी ध्यान में बैठ करके प्रसन्न है, क्योंकि योगी को ये पता लग गया कि मेरी मंजिल कहां है, मेरे अंदर मेरी मंजिल है। जब आदमी को अपनी मंजिल का पता लगता है और मंजिल तक आदमी पहुंचता है, तब आदमी के जीवन में जो आता है उसका नाम रखा यम। अब वो कैसे, तो पहले आपको अपनी मंजिल जाननी है, मेरी मंजिल है कहां, फिर आपको वह मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या साधन है, उन साधनों को जानना है। तो बोले क्या क्या जानना है आपको, सर्वम ब्रह्मेति विज्ञानात्, मेरी मंजिल कहां है और मंजिल मेरी क्या है। तो बोले तुम्हारी जो मंजिल है वो तुम्हारी आत्मा है। मैंने बताया कभी आपको, पतंजलि ने लिखा है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम्। योगी कभी जब ध्यान में ध्यान से उठता है, एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है शिवराज विजय। क्या नाम है, शिवराज विजय, बड़ी अच्छी पुस्तक है, अंबिका दत्त व्यास का लिखा हुआ है, बड़ा सुंदर पुस्तक है। उसमें एक योगी महाराज विक्रमादित्य के समय समाधि में बैठते हैं और कई सौ वर्षों के बाद समाधि से उठते हैं। उनके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता, बाहर देखा तो सब कुछ बदल गया। वहां लिखा है ऐसी प्रसन्नता, क्योंकि जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा होता है, सदियों में भगवान ने गीता में कहा, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। उस योगी के मुख पे जो प्रसन्नता थी, वो प्रसन्नता किसी दृश्य को देख के प्रसन्नता नहीं हो सकती, वो प्रसन्नता थी तो दृष्टा का अनुभव करने से वो प्रसन्नता थी। किसी बनी हुई वस्तु को पाने से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जो प्रसन्नता व्यक्ति को बनाने वाले को पाने से होती है। जो बना हुआ है उसको पाने से तो हम खुश होते हैं, लेकिन जो बनाने वाला है उसको पाने से, वो बनाने वाला है कहां। दो उपाय बताए, एक तो ये बताया सर्वम ब्रह्मेति विज्ञानात्, एक आप ये निश्चय कर लो जहां आप बैठे हैं वहीं आपकी मंजिल है, बस आपके हृदय के अंदर है। क्या लिखा है शास्त्रों में, तदेव सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इति। परमात्मा ने सृष्टि बनाई और परमात्मा ने माया से कहा अब कहां जाऊं मैं, कहीं जगह बताओ। माया ने कहा ये जो दो टांग वाला पशु बनाया बिना पूंछ वाला तुमने, इसकी आदत है बाहर की तरफ दौड़ने की, तुम कहीं भी जाओगे तो तुम्हारे को ढूंढ लेगा ये। यदि परमात्मा मंगल ग्रह पे होता तो वहां भी आदमी उसको छोड़ने वाला नहीं है, वहां भी पहुंच जाता। और ज्यादा खुरापाती आदमी, ज्यादा पापी आदमी परमात्मा को पा लेता, माया ने कहा तू कहीं जा मत, बोले कहां जाऊं मैं, तो तदेव सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशति थी, तू इसके अंदर बैठ जा बस। अब अंदर बैठे और तू सब मजा ले, आंखों से देख रूप का आनंद ले, कानों से सुन शब्द का आनंद ले, जीभ से रसगुल्ले खा रस का आनंद ले, सब आनंद लेता, कौन आनंद ले रहा है? अरे ये मुर्दे कोई आनंद नहीं लेते कभी, आनंद कौन लेता है? हाँ देखो सुनो शंकराचार्य क्या कहते हैं, सर्वम ब्रह्मेति विज्ञानात्, मेरी मंजिल खुद मैं अपनी मंजिल हूं, कोई दूसरा मेरी मंजिल नहीं हो सकता। इसलिए भगवान शंकर के बारे में जब आप पढ़ते हो, भगवान शंकर के चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखाई देती है, महिमनकार ने लिखा नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा, बोले शंकर भगवान आंखें बंद करके इतना प्रसन्न है, तुम टीवी पे टीवी देख रहे हो तो भी दुखी हो, मोबाइल पे बात कर रहे हो तो भी दुखी हो, लैपटॉप खोल के बैठे हो तो भी दुखी हो, क्यों? अब वो इतना सुखी है? बोले नहीं, उस समय वो सृष्टा से मिला हुआ है। इसलिए योग दर्शनकार ने लिखा है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जिंदगी में कभी ऐसा क्षण आता है जब इस जीव की दृष्टा से मुलाकात होती है, नहीं तो सारी जिंदगी भर हम दृश्य के साथ में उलझे रहते हैं। और दृश्य तो बनाया ही है तुमको उलझाने के लिए, और कोई प्रकृति का कोई तुमसे द्वेष है ऐसा नहीं, क्योंकि जन्मों जन्मों में आपने सकाम कर्म किए हैं, जन्मों जन्मों में आपने सकाम उपासना की है, उसका फल प्रकृति देती है, और उसका उपभोग तभी हो सकता है जब आपकी इंद्रियां बहिर्मुख हों। यदि इंद्रियां बहिर्मुख नहीं होंगी तो इसका भोग संभव नहीं है। इसलिए बनाया, इसलिए बोलते हैं जीवन में यम तभी आएगा। यम का अर्थ क्या हो गया, ध्यान रखना थोड़ा सा बात, यम का मतलब संयम, और संयम भगवान शंकराचार्य ने लिखा यमा संयमताम अहम, संयमन करने वालों में मैं यमराज हूं, मैं विरोधी नहीं हूं, कभी जीवन का विरोधी नहीं हूं, मैं जीवन को नियंत्रित करता हूं। मैं कभी आपको दृष्टांत देता था, आपको याद होगा नहीं होगा शायद, पुराने जमाने में शुरू शुरू में जब प्लास्टिक चला, हम लोग बनारस में पढ़ते थे 77-78 में, तो वो आता था वो प्लास्टिक के जूते चप्पल बाल्टियां सब खरीद करके ले जाता था, आपको मालूम होगा तो ले जाता था, और फिर उस वो क्या करता था उसको मालूम है आपको, वो जूते चप्पल बाल्टियां सब फैक्ट्री में डालता था, और फिर वो जो है नए नए बन करके फिर तैयार होके बाहर आ जाते थे, तो कभी बाथरूम की बाल्टी जो है वो किचन में चली जाती थी, और किचन की बाल्टी कहां चली जाती थी, बाथरूम में चली जाती थी, उससे तुम बड़े प्रेम से नहाते थे, क्योंकि शकल बदल गई लेकिन प्लास्टिक नहीं बदला। ऐसे ही यमराज की फैक्ट्री है, इधर से बुढ़िया को डालता है उधर से गुड़िया बन के बाहर आती है, इधर बुड्ढा डाला गुड्डा बन के बाहर आ गया, दो टांग वाला डाला चार टांग वाला बाहर आ गया, ऐसी गजब की फैक्ट्री आपने देखी नहीं होगी कहीं। एक जगह मैं था, एक माई गाय को घास खिलाती थी, बड़े प्रेम से घास खिलाती थी, मैं आ रहा था मैं घूम के, मेरे को नमस्कार किया, बोले महाराज जी देखिए गाय इतनी अच्छी है, प्रेम से घास खाती है, हाथ वात घुमाया उसके ऊपर, हमें गाय पिछले जन्म में कोई सत्संगी रही होगी, इसके मन में कोई वासना रही होगी, तो ध्यान रखना कहीं अगले जन्म में ये नहीं बन जाना, बड़ा ध्यान खिलाओ गाय को घास, लेकिन ज्यादा मोह मत रखो, आगे चलो, यहां रुकने जैसा क्या है यहां दुनिया में, आदमी कहीं ना कहीं उलझ जाता है। इसलिए बोलते हैं कबीर ने लिखा है, कबीरा खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। न किसी से दोस्ती है न किसी से बैर है, सबसे जयराम जी की करते आगे बढ़ जाओ। अच्छा, इसलिए आचार्य कहते हैं ये जीवन में यम क्या चीज है, तो बोले यम जो है वो जीवन का संयमन है। संयम कब संयम है, संयम कब जीवन में फलित होता है, जब आपको ये लगे कि जो आप पाना चाहते हैं वो आपके अंदर है, बस तब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको पता है मैं जो पाना चाहता हूं वो कहीं दूर है, तो फिर आपको वहां जाना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि मैं जो पाना चाहता हूं वो मेरे अंदर विद्यमान है, तब आपके जीवन में वो संयम आ जाता है। और भगवान शंकराचार्य कहते हैं यमो यम इति प्रोक्तम प्रोक्तो, उस संयम का नाम ही यम है। और ये गीता से ये बात मिलती है, कृष्ण कहते हैं यमः संयमतामहम्, भगवान बोलते हैं। तो यहां देखो क्या, सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानात् इंद्रिय ग्राम संयमः। और शरीर क्या है, कृष्ण ने दो शब्दों का प्रयोग किया भगवद गीता में, एक तो भूत ग्राम, जैसे आदमियों का गांव, तो आदमियों के गांव में कौन रहता है, आदमी। ये शरीर क्या है, भूतों का गांव है, इसमें एक भूत नहीं, कितने भूत रहते हैं, पांच भूत रहते हैं। और ऊपर से बता दिया इंद्रिय ग्राम, और इंद्रियों का गांव है, एक नहीं इसमें दस इंद्रियां रहती हैं, तो ये भूतों का और इंद्रियों का गांव है, इसको बोलते हैं कार्य करण संघात। तो ये जो है यम, यम का अर्थ हो गया रुक जाना, जीवन को नियंत्रित करना, और जीवन नियंत्रित तभी होता है, मन की वृत्तियां नियंत्रित तब होती हैं जब आदमी समझ लेता है कि मेरी मंजिल कहीं और नहीं, मेरी मंजिल मेरे अंदर ही विद्यमान है। उसके पहले आप कितना भी समझा लो, कितना भी रोको, रुक नहीं सकता। और जिस दिन आपको ये पता लग गया मेरी मंजिल मेरे अंदर है, उस दिन आपको कोई कितना भी भगाने की कोशिश करे, आप भागने के लिए तैयार नहीं, दौड़ने के लिए तैयार नहीं। जब आपको ये पता लग जाए कि मेरी मंजिल कहीं और नहीं, मेरे अंदर ही मेरी मंजिल है। अच्छा, फिर कहते हैं बाहर के पदार्थों से उसको, अपने यहां कहते हैं संसार को क्या बोलते हैं, संसार सागर बोलते हैं, अपने बोलते हैं संसार सागर। तो उसने कहा ये संसार सागर जो है ना, ये सागर भी जो है ना, संसार की तरह खुदगर्ज है। कैसा है, खुदगर्ज समझते हो, अरे खुद अपने को समझ लो तो खुदगर्जी समझ में आ जाएगी है? ये समंदर भी तेरी तरह खुदगर्ज है, ये समंदर भी तेरी तरह खुदगर्ज है। जब तक जिंदे थे तब तक तैरने नहीं दिया, और मर गए फिर डूबने नहीं दिया, ये बड़ी मुसीबत की बात है। जब तक जिंदे रहते हैं, कितना भी ताकतवर इंसान हो, समुद्र की लहरों के साथ में लड़ नहीं सकता है। लाख तुम बोलो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, लेकिन कभी बचाने वाला बड़ा नहीं होता जिंदगी हार जाती है और मौत जीत जाती है। होता है कि नहीं होता? बैठे मंदिरों में जप कर रहे हैं, त्र्यंबकम यजामहे कर रहे हैं, कब कुछ करते रहे। ऐसा मैं नहीं कहता ऐसा मत करो, आप जरूर करो आप, लेकिन जीत हमेशा मौत की होती है। क्योंकि जो जीवन है वो मौत का रूप धारण करके तुम्हारे पास में आता है। ड्रेस यमराज जो है वो कृष्ण भगवान जो है ड्रेस बदल के आते हैं, सींग विंग लगा के। अच्छा, कोई हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं समझना आप, उसमें लिखा है गीता में मृत्यु सर्वारस्याम, मैं मौत बन करके आता हूं, आदमी का सब कुछ हरण कर लेता हूं। कृष्ण ने थोड़ा अर्जुन को अपना रूप दिखाया, जिस कृष्ण के साथ में अर्जुन मजाक करता था, लिखा है उसने विहार सैया सन भोजनेशु अजानता वापी महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयन वापी। कृष्ण के हाथ मजाक करता, कृष्ण ने जब थोड़ा अपना रूप दिखाया तो भगवद गीता में लिखता है भीतः भीतः प्रणम्य, नमस्कार करने में भी डर लगने लगा, डर गया। जीवन और मृत्यु दो नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू, जीवन और मृत्यु है, वही परमात्मा। कृष्ण कहते हैं जीवनम सर्वभूतेषु मृत्यु सर्वरस्याहम, मैं जीवन बन के सब कुछ देता हूं और मौत बन करके सब कुछ ले लेता हूं, खाली ड्रेस बदलता हूं और कुछ करता नहीं हूं। अच्छा बता भी, सच्ची बात बता भी देते हैं। अच्छा तो विज्ञानात इंद्रिय ग्राम संयमा, ज्ञान से इंद्रियों में संयम नहीं आता। ये ख्याल बताइए, यहां शंकराचार्य ने कहा ज्ञान से संयम नहीं आता, विज्ञान से संयम आता है। सिगरेट की डिब्बी पे लिखा रहता है सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, फिर भी चुस्की लेने वाले चुस्की लेते हैं कि नहीं लेते? वो कोई तुम्हारे जैसे ही नशेड़ी है, वो तो खाली कंपनी वालों की बात को नहीं मानता, तुम तो भगवान की बात नहीं मानते। भगवान ने लिखा है गीता में दुखालयम अशाश्वतम, अरे जैसे बोलते हैं ना विद्यालय, तो विद्यालय में क्या मिलता है? औषधालय, औषधालय में क्या मिलता है? दवा। ऐसे ही कृष्ण को पूछा दुनिया क्या है, बोले दुखालयम, और क्या है? अशाश्वतम। हर आदमी प्रतिपल मौत के करीब पहुंचता चला जाता है। और बड़ी मजेदार बात यह है, मौत के करीब पहुंचने की वो खुशियां भी मनाता है, जन्मदिवस बड़े धूमधाम से मनाता है। जिंदगी का एक साल कम हो गया, यदि जो पाना था यदि वो पा लिया तो खुशी मनाओ, लेकिन जो पाना था वो नहीं पाया और जिंदगी का एक साल गंवा दिया, इससे बड़े दुख की और कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए आचार्य कहते हैं ज्ञान से नहीं विज्ञान से। भगवान शंकराचार्य ने गीता का भाष्य आप देखेंगे, वहां लिखा है विज्ञानम अनुभव आत्मकम। विज्ञान क्या चीज है? विज्ञान अनुभव है। अब सिगरेट पीते 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 कैंसर हो गया। एक आदमी था प्रेम कुटीर में आता था, बड़ा तमाखू खाता था उसको। अब अपने एक आदमी बोला, अरे काय को इतना खाते हो, अभी 31 जनवरी को शरीर छूट गया, पूरे मुंह पे इतना कैंसर हो गया, बाप रे बाप। वो विज्ञान हो गया, अब उसको देगा कोई तो भी नहीं खाएगा वो, क्यों? विज्ञान, विज्ञान बोलते हैं अनुभव आत्मकम। जब आपको अनुभव होता है कि मेरी मंजिल मेरे अंदर विद्यमान है, तब आप अंदर जाने की कोशिश करते हैं, और फिर कैसे जाना है तो उसका पहला साधन बताया क्या, यम। ये है जिंदगी। और सबसे साधना की सबसे बड़ी चीज क्या है मालूम है, कि जो सामने होता है उसे आदमी बुरा कहता है, जो सामने होता है उसे बुरा कहता है, और जो कभी देखा नहीं उसको खुदा कहता है। हमें जीना उसके साथ में है जो है, जो नहीं है उसके साथ में जीने का कोई उपाय नहीं है। हम अपने अतीत का स्मरण करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, भविष्य की कल्पना करते हैं, इसलिए इंसान का एक स्वभाव है जो है उसको बुरा कहता है, और जो नहीं है उसको उसी के सामने जो है वो उठक बैठक कर रहा है, दंड लगा रहा है, होता जाता कुछ नहीं है। फिर बोलता है इतने साल हो गए कुछ हुआ नहीं, अरे कुछ हो तो हो ना, अरे सब कुछ बैठा उसने तो महाराज ऐसा किया। बृहदारण्यक में सुरेश्वराचार्य लिखते हैं भारतीक में, उसने ऐसी सुंदर रचना की, और सुंदर रचना करने के बाद वो रचनाकार इसी रचना में ही तदेव सृष्ट्वा, सृष्टि करके तदेव अनुप्राविशत, और उसी में छुप गया, अंदर बैठ के सुंदर आनंद ले रहा है, हर चीज का आनंद वही ले रहा है। इसलिए बोलते हैं यमो यम इति संप्रोक्तो अभ्यसनीयो मुहुर्मुहु। लेकिन आचार्य ने कहा इसका आपको क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, बार बार अभ्यास करेंगे तब आपके जीवन में यम की साधना होगी। तो यम आप समझ गए होंगे शायद, अभी कितने श्लोक हो गए, 104, 105 नंबर का श्लोक लीजिए भाई। यम के बाद आया क्या, नियम। तो यम कैसे साधते मालूम है, यम में आपकी गति समाप्त हो जाती है, और गति समाप्त तब होती है जब आपको ये पता लगता है कि आपकी मंजिल आपके अंदर ही है। जैसे बस प्रेमपुरी आश्रम आता है तो आप गाड़ी खड़ी कर देते हैं, उसी का नाम है यम। और नियम क्या है, तो शंकराचार्य भगवान बोलते हैं, देख लीजिए, सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृति नियमो परमानंदो नियमात् क्रियते बुद्धि। यम के बाद आ गया नियम। सबसे पहले आपको अपने जीवन में एक नियम लेना चाहिए, नियम। नियम का अर्थ नितराम, स्थिति, नियम से करना है इसका नाम है नियम, नियम से। आदमी सत्संग के लिए उसके पास में टाइम नहीं है, इसके लिए टाइम नहीं है, लेकिन खाने पीने के लिए टाइम, कोई मर भी जाएगा तो भी खाने के लिए टाइम तो निकाल लेता है आदमी, क्योंकि जीवन की एक ऐसी आवश्यकता है वो, जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता। इसी प्रकार से जब आदमी अध्यात्म में प्रवेश करता है, और अध्यात्म में प्रवेश करने के बाद आदमी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि शास्त्र सुनना वो अपने जीवन के लिए अनिवार्य समझता है, ये उसकी एक भूख होती है। नियम से आप नियम लेते हैं कि नियम से हम सत्संग करेंगे, नियम से हम ये काम करेंगे। तो आचार्य लिखते हैं सजातीय प्रवाह, सजातीय माने एक जैसा प्रवाह। जैसे आप श्री कृष्ण का चिंतन का ध्यान कर रहे हैं, एक आदमी ने कहा है, वो आदमी तुम्हारे जैसे बड़ा ज्ञानी, ज्ञानी आदमियों की बात सुननी चाहिए, ज्ञानी के साथ साथ में अनुभवी, उसने कहा रे चित चिंतय चिरम चरणो मुरारे, अपने मन को बोल रहा है रे चित्त चिंताया, हे चित्त मुरारी के चरणों का चिंतन करो। अब ये मुरारी के चरणों का चिंतन करो क्यों? पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य, उसी के चरणों का चिंतन करना, ये भवसागर से पार हो जाएगा। बोले क्यों? तो उसने जो दृष्टांत बताया ना, बड़ा सुंदर उन्होंने दृष्टांत दिया। कोई बहुत बड़े गृहस्थ रहे होंगे, उन्होंने दृष्टांत दिया, हमने अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा। बच्चा पैदा होता है, उसकी मां उससे जितना प्रेम करती है उतना ही प्रेम उसका बाप भी उससे करता है। बाप दिन भर भागता दौड़ता, किसके लिए भागता दौड़ता है? सारी दुनिया से उसके बाप के मन में जीतने की ख्वाहिश होती है, लेकिन जीतने के बाद जो खुशी उसको मिलती है उससे भी ज्यादा खुशी उसको तब मिलती है जब वो हकीकत में अपने लड़के से हार जाए, उससे योग्य उसका लड़का हो जाए। तो तुम जो जिससे हारने से व्यक्ति को खुशी मिलती है उसका नाम है बाप। जो हारने के बाद भी खुश होता है उसका नाम क्या है? बाप। लेकिन बच्चा मां की छाती से ऐसा चिपका रहता है, उसका बाप उसको गोद में लेना चाहता है लेकिन मां के पास आने के लिए तैयार नहीं है वो, उसका कारण क्या है? बच्चे की सारी आवश्यकताएं मां से पूरी होती हैं। संसार का जो प्रेम है, इसलिए एक महात्मा थे शरणानंद जी महाराज, वो बड़ी अच्छी एक बात कहते हैं, संसार में तीन चीजें हैं, सेवा, प्रेम और खोज। सेवा, प्रेम और खोज। संसार को तुम्हारी सेवा चाहिए, हाँ, तुम्हारी पत्नी बोलती है तुम्हारा प्रेम चाहिए, वो झूठ बोलती है, खाली उसको साड़ी की जरूरत हो बोले मैं तेरे से बहुत प्रेम करता हूं, उसको 5,000 की सैंडल चाहिए तुम बोलना मैं तेरे से बहुत प्रेम करता हूं, 10-15 दिन के बाद बोलेगी तेरा प्रेम जाए भाड़ में। ये अन्नमय कोष है, ये वो उसकी गलती नहीं है। संसार में व्यवहार जो चलेगा वो एक दूसरे की आवश्यकता पूरी करने से व्यवहार चलेगा। तो वहां प्रेम, हां, उस सेवा का नाम तुम प्रेम रख सकते हो, है ना? जैसे कोई माई भीख मांगती हो और उसका नाम लक्ष्मी देवी रख दो, इसी प्रकार से संसार एक बड़ी, जिसकी तुम जितनी ज्यादा डिमांड पूरी करते हो वो लगता है कि तुमसे उतना प्रेम करता है, लेकिन पागल तेरे से प्रेम नहीं कर रहा है। वो वस्तु की जो पूर्ति हो, यहां आवश्यकता की पूर्ति होती है तो प्रेम होता है। इसलिए वो कहा करते थे, महात्मा प्रज्ञा चक्षु थे, पहले प्रेमपुरी में आया करते थे, वो मानव सेवा संघ के संस्थापक थे, वो बड़े अच्छे महात्मा थे। वो कहते थे प्रेम जीवन में हमेशा, परमात्मा को वस्तु की जरूरत नहीं है, परमात्मा को प्रेम की जरूरत है। तो संसार की सेवा चाहे धन से हो चाहे बल से हो, लेकिन संसार को तुम्हारी सेवा चाहिए। हाँ, नहीं तो तुम बोलो अपने परिवार से हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं तो सब बोलेंगे तुम जा, तुम अपना प्रेम लेके कहीं और चला जा, चाटेंगे प्रेम को। इसलिए संसार की सेवा, संसार की सेवा प्रेम उनसे कीजिए और परमात्मा को चाहिए खाली प्रेम, सेवा नहीं। अब तुम बैठे हो, फूल चढ़ा रहे हो, चंदन चढ़ा रहे हो, और ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्या उसको, क्या तेरे फूल से, क्या तेरे चंदन। अरे वो तो यदि पेड़ पे परमात्मा है, उसमें फूल लटके हैं, तो परमात्मा उसी से खुश है। वो पेड़ पे फूल हैं, वही परमात्मा की शोभा है। ये प्रकृति 24 घंटे परमात्मा की सेवा करती है, ये परमात्मा को समर्पित है, और जो तुम्हें समर्पित होता है उसके प्रति तुम्हारा ये भाव होता है, ये मेरा है। ये भाव करना नहीं पड़ता, इसलिए भगवान ने कहा भिन्ना में प्रकृति अष्टदा। ये प्रकृति जो मेरी है, ये पृथ्वी है, भूमि, भगवान ने पहले प्रकृति गिनाई भूमि, आपो अनलो वायु, मेरी प्रकृति, ये मेरी प्रकृति है। हीरे की अंगूठी पहनते हो, कहां से आती है? पृथ्वी से। पानी कहां से आता है? पृथ्वी। कोयला कहां से आता है? सारी आवश्यकता ये पूरी करती है, इसीलिए इसे मां कहते हैं। और ब्रह्म विद्या को मां इसलिए कहते हैं, आचार्य ने जो लिखा है मातृ सतात पितृश्री भगवती श्रुति, वो ऐसी मां है कि तुम्हारी सारी इच्छाएं समाप्त कर देती है। बस एक तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करती है, और एक तुम्हारी इच्छा पूरी समाप्त कर देती है, वो तुम्हारी स्थिति परमात्मा में करा देती है। ये ब्रह्म विद्या है, सब आवश्यकताएं पूरी करती है। तो हो गया सेवा और प्रेम। तो संसार में जरूरत है सेवा की, और परमात्मा को जरूरत है प्रेम की। और लगे हुए हैं 3 घंटा 4 घंटा लगे सेवा में, उसको कोई चंदन चढ़ा रहा है, कोई ये कर रहा है, ना कोई वो कर रहा है, वो सब ऐसी भावना ने पूरा धर्म बर्बाद कर दिया। उसको क्या लेने देने का है तेरे को, तेरी सेवा से? सेवा तो उसकी, जब आकाश से पानी बरसता है वो सेवा करता। कालिदास ने लिखा है रघुवंश में, अवेहि माम किं करमष्टमूर्ति, मैं भगवान शंकर की अष्टमूर्ति की पूजा करता हूं। महिमन का पाठ करते हैं कभी कभी, उसमें एक 26 नंबर का श्लोक आता है, महिमनकार लिखते हैं, त्वम अरकस त्वम सोमस त्वमसि पवनस त्वम उतवः त्वम आत्मा, लिखा है वहां पे। ये अष्टमूर्ति ये है, ये प्रकृति भगवान की सेवा करती है, है? कालिदास ने एक श्लोक लिखा है बड़ा अच्छा। कालिदास भी आदमी बड़ा काम का था, उसने लिखा, जब बसंत ऋतु आती है, दुर्मा सपुष्पा सलिलम सपद्मा, पेड़ अपना दिल खोल देते हैं। कभी आप गए, कभी फूलों की घाटी की तरफ गए हों, पहले ऋषिकेश के आगे, पहले बहुत पुरानी बातें हैं, कैलाश वाले महाराज जी थे, के साथ घूमने के लिए जाते थे कभी कैलाश के पीछे की तरफ, पहले जंगल था बड़ा, एक बसंत ऋतु में ऐसे फूल खिलते हैं, ऐसे फूल खिलते हैं, ऐसा लगता है। दुर्मा, मैंने संस्कृत में दुर्म बोलते हैं पेड़ों के लिए, दुर्मा सपुष्पा, ऐसा लगता है कि पेड़ इतना खुश है कि अपने अंदर का सारा सौंदर्य जो है ना, उसने भगवान को समर्पित कर दिया। आप अच्छी जगह पर जाते हैं तो श्रृंगार करके क्यों जाते हैं? श्रृंगार कोई आदमी अपने लिए करता है कि दूसरे के लिए करता है? क्या लगता है आप, अपने लिए करते हैं कि दूसरे के लिए करते हैं? हैं? देखो, हमेशा एक नियम है, रूप स्वसंभोग्य नहीं होता कभी भी। जब आदमी अपने को देख करके मोहित होने लगता है तब आदमी की मृत्यु सन्निकट होती है। महाभारत में ऐसा आता है कि जब पांडव जंगल की तरफ जाने लगे तो शिशुपाल का मुकुट वहां रखा हुआ था, कहां? अलमारी के अंदर। तो उसको भीम ने कहा था परीक्षित को कि कभी यहां ये अलमारी खोलना नहीं। तू जब उसकी मृत्यु सन्निकट आती है तो एक दिन वो अलमारी खोलता है, और वहां शिशुपाल का जब मुकुट देखा उसने, जरासंध का मुकुट देखा, उसमें इतने हीरे जड़े हुए थे, इतने हीरे जड़े हुए थे, और थोड़ा उसने पहन के देखा और बोलता है, हा हा, मैं कितना खूबसूरत लगता हूं। रूप कभी स्वसंभोग्य नहीं होता, वह उसका उपभोग हमेशा दूसरा ही करता है। हाँ, एक सूत्र है सांख्य दर्शन का, आपने सुना होगा बहुत बारी, संघातस्य परार्थत्वात्। इस दुनिया में जो भी चीज बनी है, देखो ध्यान रखना, जो बनाने वाला दूसरे के लिए नहीं है, लेकिन जो भी चीज बनी है वो दूसरे के लिए बनी है, और समय पे आपको उपयोग करना है। आप देखते होंगे दवाई का जो होता है ना पत्ता, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। इसका अर्थ क्या है? इसके अंदर ही आपको इसका उपभोग करना है, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो व्यर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार से रूप स्वसंभोग्य नहीं होता। परीक्षित अपने को देख करके ही मोहित हो गया और जंगल में चला गया, उसी समय कलयुग को अवसर मिल गया और उस मुकुट में वो बैठ जाता है, और जो इतना सम्मान करने वाला है महात्माओं का, वो जाकर के ऋषि के गले में सांप डाल देता है। ये है, देख लीजिए। चलिए, सजातीय प्रवाह, एक जैसा प्रवाह, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, जो भी एक जातीय प्रवाह चल रहा है, विजातीय तिरस्कृति, कोई उसमें विजातीय मैंने दूसरा कोई प्रत्यय नहीं आता उसमें, वृत्ति लगातार एक जैसी चलती है, एक समान चलती है। जब विजातीय प्रत्यय का तिरस्कार होने लगता है, नियमो ही परमानंदो, वो जो नियम है उस नियम का नाम ही क्या है, परमानंद। वो परमानंद को देने वाला ये नियम ही, इस नियम से, इस नियम का जो पालन करते हैं उसके जीवन में परमानंद की प्राप्ति होती है। नियम से सजातीय प्रवाह एकदम चलता रहे, चलता रहे सजातीय प्रवाह, फिर बात बन जाती है। ऐसा एक सजातीय प्रवाह है, नियमो परमानंदो नियमात् क्रियते बुद्धि। लेकिन बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो नियम से इस नियम का पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया और पांच दिन छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं है। सतत करोगे तब उसका नाम क्या हो जाएगा। तो ये यम का भी निरूपण हो गया और नियम का भी निरूपण हो गया। अब जो है, कल तो कार्यक्रम पूरा होगा तो कल मैं जो है ना कोई श्लोक नहीं चलाऊंगा, कल थोड़ा आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि साधना व्यक्ति को कैसी करनी चाहिए, उसके ऊपर जो है ना कल थोड़ा सा, अभी तक आचार्य ने जो बताया यम नियम, तो उसके बारे में बताऊंगा कि साधना कैसी करनी चाहिए, कल उसके बारे में बताऊंगा।